नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ जजेस हैं। इनके पेशा के बारे में अगर हम बात करें, वो बहुत कुछ प्रमाण के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप सही है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो फिर आप गलत है। लेकिन ये सब जो करते करते कभी कभी उनको गलत का साथ भी देना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूरी है पेशा की। तो ऐसे समय में क्या उनके मन कभी उनको कचोटता है? क्या उनकी आत्मा उनको गलत रास्ता से जाने से बचाने का कोशिश करता है? कभी उनको आत्मा उनकी दुखी होती है? इसी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म एक एडवोकेट को, एक जज को अपने काम में किस तरह से मदद कर सकता है। और इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत है। दीदी, जैसे हमने पूछा कि इनका काम, जैसे जहां तक मुझे मालूम है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रमाण के ऊपर, तो जबकि उनको कभी कभी पता होता है कि ये आदमी गलत है लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं है, तो इनका पेशा का जो जरूरत है कि वो प्रमाण ऊपर विश्वास करेगा, तो हो सकता है कि कभी कभी उनके मन के भीतर बहुत दुख होता होगा, कभी मन उनका परेशान होता होगा, तो इस समय आप स्पिरिचुअल लीडर के हिसाब से, गुरु के हिसाब से उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि वो अपना पेशा भी ठीक से करे लेकिन गलत इंसान भी ना बने।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर आप सभी ज्यूरिस्ट विभाग के आए हुए भाइयों का बहुत स्वागत है। और ये विद्यालय एक ऐसा है जहाँ पर कोई भी विभाग का व्यक्ति आता है, उसके हर प्रश्नों का हल भी मिलता है, उसकी समस्याओं का समाधान भी होता है और उसके संदेह को भी मिटाया जाता है। अगर वो इसमें घुसकर इस आध्यात्मिकता की ओर जाने की कोशिश करें और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा ले, तो वो इन सब बातों को हल प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस विद्यालय का पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक परमपिता परमात्मा है। इसका कुछ पढ़ाई भी है, कुछ लक्ष्य भी है।
पहला प्रश्न हम लेते हैं, ये पूछने वाले हैं हृदय बल्लभ दास, जो कि रिटायर्ड सीबीआई जज है।
Whether spiritualism is necessary on the part of a judge while passing sentence besides law and procedure?
वो भले ही अपने स्थान पर यहाँ जज है, आपने देखा होगा जिस देश का जैसा संविधान होता है वैसा शासन प्रशासन चलता है। पहले एक समय में क्या था, न्याय मंत्रालय होती थी और वहाँ कुछ विधान की पुस्तकें बना दी जाती थी और पुस्तकें छपाकर स्कूल कॉलेज में देकर और उसमें पढ़ाई पढ़ के मनुष्य कोई वकील बन जाता, कोई जज बनता, और धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ता चला गया। परंतु ईश्वरीय संविधान के मुताबिक सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा सुप्रीम जज जो है वो परमपिता परमात्मा है। जब आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचते हैं, एक समय था जज इतने न्यायप्रिय थे, इतने अच्छे थे कि अगर उसका बेटा भी भूल करेगा उसको भी फांसी की सजा देने के लिए वो सही बोलते थे और कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा है, वहाँ मोह लोभ जागृत नहीं होता था। परंतु आज इतना लोभ मोह ने स्थान दे दिया है कि जज एक सही जजमेंट देने के लिए उसे जरूर आध्यात्मिकता का अगर वो आधार ले ले, उसमें दो ही शक्ति होती है आध्यात्मिकता में, एक होती है नॉलेज और एक होती है मेडिटेशन। तो नॉलेज को भी लाइट और माइट कहते हैं, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। और जो मेडिटेशन है उसका पूरा संबंध और कनेक्शन जो सुप्रीम जज है परमात्मा उसके साथ रहता है, और जब उसका संबंध उससे जुड़ जाएगा तो वो जो भी जज फैसला देगा वो एकदम युक्तियुक्त और ऐसा सही देगा, क्योंकि उसके जीवन के अंदर योग आ जाएगा। योगी का अर्थ ही होता है युक्तियुक्त, वो जो बात दूसरे को बताएगा वो युक्तियुक्त फैसला देगा, जिससे जो फैसला लेने वाले आएंगे वो सब संतुष्ट हो सकेंगे। तो आध्यात्मिकता उसकी ब्रेन को और सही जजमेंट पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शक्ति है, और उसकी एक बिल्कुल सहज विधि है जिसको कहते हैं राजयोग। और राजयोगी वो बन जाए तो वो जज अपने पेशे के अंदर जो कार्य करता है वो बहुत सुंदर तरीके से और सफलतापूर्वक निभा सकता है और कर सकता है।
एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, जैसे जज के हाथ में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि किस एक इंसान बहुत गलत काम किया है, उसको जैसे मौत की सजा कभी कभी सुनानी पड़ती है, तो ये किस तरह से, ये क्या सही है कि किसी को मौत की सजा, ये भगवान के हाथ में है, तो एक जज जो कि अपना ड्यूटी कर रहा है तो वो मजबूर होता है, तो उसमें क्या आप बोलेंगे?
अगर जज और वकील जो आपके सामने फैसला लेके आया है और वहाँ फांसी का बात है, तो वो अगर उसको ये सोच ले के पेशेंट है तो उसके अंदर उसके लिए करुणा और दया की भावना आ जाएगी। तो करुणा और दया के कारण एक सही व्यक्ति को वो फांसी से बचा सकता है, और बचाने में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन एक गलत व्यक्ति है जो रोज किसी ना किसी का मर्डर ही करता रहता है और उसके कारण हजारों लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को जज की सीट पर बैठ करके अगर फांसी की सजा दी जाती है तो वो सही है, कोई गलत नहीं है। उसके अपने कर्म के आधार से उसको फल प्राप्त करना जरूरी।
एक आदमी मर्डर करने का बाद मेरा पास आया, बोला वकील साहब किसी तरीका से मुझे बचा लो। इसको बचाने के लिए कोशिश करने का मतलब स्पिरिचुअली जिम का बाहर जाने पड़ेगा, मिठा का आश्रय लेने पड़ेगा, ये क्षेत्र में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए?
अगर आप ये पक्का जानते हैं कि इसने मर्डर किया है परंतु किसी पैसे के लोभ में आकर या उसकी रिलेशनशिप के हमदर्दी में आकर के उसको बचाना उचित नहीं है, और अगर आपने ये समझ लिया कि रियली में इसने मर्डर नहीं किया है लेकिन इसके ऊपर झूठा लेप छेप लगाया जा रहा है, तो आप ऐसी परिस्थिति में उसे थोड़ा झूठ बोल करके बचा लेना भी आवश्यक है। सही को सही रिप्लाई मिलना चाहिए और गलत को गलत मिलना चाहिए, लेकिन सही को अपने लोभ के लिए हम गलत अपने पेशे के लिए और बचाने की कोशिश करते हैं तो वो रियली में हमारी गलती होती है। मनुष्य को या वकीलों को झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, लेकिन लोभ के वश होकर के और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलना, जहां नहीं जरूरत है वहां भी बोलना, वो पाप है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। हमारे पास एक भाई थे, उन्होंने प्रश्न किया कि ब्रह्मा कुमारी झूठ बोलती है। हमने कहा बोलती है, किस कंडीशन बोलते हैं ये आप सोचिए। अगर मेरे पास आपकी पत्नी आई है और आपको पता लग जाएगा कि आपकी पत्नी मेरे पास गई है और आप यहाँ आकर एक तलवार और बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे कि मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा अगर ये यहाँ पर आई तो, अब वो एक ईश्वरीय दरबार है, प्रभु से प्यार करने सही रास्ते पर आई है, और अगर मैं उसको निकाल दूंगी कि ये खड़ी है तो उसकी जान आप ले लेंगे, तो ऐसे समय में मुझे उसे छुपा देना उचित है और कल्याण है। हो सकता है एक दिन उसकी कल्याण के आधार से आपका भी कल्याण हो सके। कोई वो गलत स्थान पर तो आई नहीं है, तो ऐसी जगह पर मजबूरी में दूसरे की रक्षा करने के लिए हम कुछ गलत करते हैं तो वो सही हो जाता है, परमात्मा की जिम्मेदारी उसमें होती है। लेकिन सही है, उसने मर्डर नहीं किया है या मर्डर किया है पर हम बचा रहे हैं क्योंकि हमें 1,00,000 रुपया देगा, वो गलत है और उस समय झूठ बोलना पाप है।
हमारा पेशा का चीज को हम नहीं माने, सपोज हम नहीं लिए, वो केस नहीं लिए, तो इस तरह से तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो कल घर के बाकी लोग, बीवी नाराज होगी, बच्चे नाराज होंगे, तो फिर
ऐसा नहीं है। आपके घर वालों को 10,000 रुपए की जरूरत है खाने पीने रहने के लिए, उदाहरण बता रही हूँ, लेकिन आप चाहते हैं मैं 2,00,000 रुपया लाऊं जिससे हवाई जहाज में उड़ूंगा और बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम करूंगा, वो गलत है। लेकिन घर के लिए जितनी आवश्यकता है, आपके लिए जो आवश्यकता है उसके लिए आप जो कमाते हैं वो ठीक है, क्योंकि आजकल बिना कमाए और बिना खर्च किए तो घर वाले भी संतुष्ट नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, वो आपका पेशा है। लेकिन अधिक ज्यादा उसमें काम क्रोध लोभ की मात्रा हो जाती है और उसके कारण वो सिर्फ अपने ऐशो आराम की बात सोचता रहता है, प्रभु को भी भूल जाता है, आध्यात्मिकता को भी भूल जाता है, वो गलत है।
थ्रू स्पिरिचुअलिटी क्या हम केस बिल्कुल नहीं करने देंगे? अगर स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करके लिटिगेंट जो लोग कोर्ट को आते हैं अगर हम उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं तो ये टोटल ये सिस्टम के अबोलिश नहीं हो सकता?
वो तो ऐसा है कि वर्तमान समय तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि जब कोई केस लेकर जाता है, एक फाइल एक वकील के पास जाती है, वो अपना एक अर्थ निकाल के उसके सामने रखता है, दूसरी फाइल दूसरे के पास जाती है, वो अपना अर्थ निकालता है, और वहां इतनी भागदौड़ होती है कोर्ट के अंदर। भले ही पहले एक छोटा कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, कितने लोग तो इतने डर जाते हैं। हमने देखा है कि वहां कटघरे को देखकर और काले कोट वाले वकीलों को देखकर उनका माथा चक्कर खाने लगता है और सिर में दर्द हो जाता है, दिल दहलने लगता है, घबरा जाती है और वो मन में सोचते हैं कि इससे तो अच्छा कबूतर है, एक खुली हवा में घूमता है, मुझे इस मुकदमे के पैंतरों से और इस कोर्ट कचहरी के मामले से मुझे बच जाऊं तो अच्छा है। वो नास्तिक भी है, भगवान को भी नहीं मानता है, फिर भी उसकी स्त्री बच्चे माँ सब कहती हैं आप प्रभु को याद करो, उसको कहने से हाथ जोड़ कर यही कहता है कि हे भगवान मुझे इस केस कचहरी के मामलों से तुम बचा दो, और पुलिस के मामलों से, पुलिस भी इसीलिए घूमती रहती है कि मेरे को कोई मिले और मैं जेल के अधिकारी के पास जाऊं और उसको कैदी का कपड़ा पहनाऊं और अंदर दूसरी हवा में घुसा दूं। सब काम करते हैं पैसे के लिए, तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है हे प्रभु क्या आप ऐसी दुनिया नहीं ला सकते हो जहाँ कोई अन्याय अत्याचार अनाचार ना हो, जहाँ कोर्ट कचहरी ना हो, जहाँ शांति प्रेम परस्पर स्नेह सम्मान रिस्पेक्ट की दुनिया चलती हो। प्रार्थना करता है, जब कोई भी व्यक्ति इस चीज की प्रार्थना करता है जैसे भाई भी यही कह रहे हैं तो उसकी सुनवाई तो जरूर होगी पर टाइम पर होगी, हर चीज का समय होता है। अभी पहले जितने कोर्ट कचहरी नहीं थे उससे 100 गुना अभी हो गए, वकील भी 100 गुना 1,000 गुना हो गए। अब इतने लोगों का पेशा चल रहा है, इतने लोगों को कोर्ट कचहरी में भागना पड़ता है, एक साल भागेगा व्यक्ति तो दौड़ते दौड़ते उसका 1 महीना आयु घट जाती है, ऐसा भी अनुभव होता है चिंता और सोच में। परंतु ये सब अभी होना ही है, क्योंकि अभी क्या समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। जब कलयुग की अति का टाइम है तो वो सुंदर प्रशासन कहाँ है जो देवताओं की दुनिया में था, वो कहाँ है जहाँ बिल्कुल प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता शक्ति, बिल्कुल द्वेष नहीं, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मर्डर नहीं, कुछ नहीं, ऐसी दुनिया तो अभी है ही नहीं। तो इस दुनिया में तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, आप स्वयं ये पुरुषार्थ कर सकती है एक वकील के नाते से, क्योंकि हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत वकील भी आते हैं, अपना पेशा भी संभालते हैं और डेली यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं। जब आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे, चाहे वकालत पढ़ने जाइए, चाहे बैरिस्ट्री चाहे डॉक्टरी, जब तक उसका कोर्स नहीं करेंगे, पाठ नहीं पढ़ेंगे, तो आप डॉक्टर और बैरिस्टर और इंजीनियर तो नहीं बन सकते, पढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक कॉलेज है, इस कॉलेज का लक्ष्य है मनुष्य देवता बनने का और ऐसी दुनिया लाना जिसमें प्रेम सुख शांति आनंद सम्मान परस्पर एक दो का मिलन, शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पिए, ऐसा संसार लाने का निर्माण किया जाता है।
इसी के द्वारा ये संभव है और धीरे धीरे करके एक एक करके बदलेंगे लोग और एक समय भी ऐसा आएगा कि ये सब
ऐसी दुनिया आ जाएगी। जब ये स्वयं अपना परिवर्तन कर लेंगे तो अपने उसके अंदर जितने लोग रहते हैं उन सबको धीरे धीरे भू भू करके उनको भी बदल सकते हैं। अपने परिवर्तन के ऊपर आधारित है।
इफ ऑफेंस अंडर पेनल कोड सेज वन थिंग एंड द सोशल जस्टिस सेज अदर, वेदर जज शुड गो फॉर सोशल जस्टिस और गो टू द स्टैट्यूट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस।
वो तो आपको जज करने के लिए बुद्धि मिली है ना, जजमेंट पावर और परखने की पावर आपके पास है। तो आपके पास जो लोग आते हैं समाज, चाहे कितना भी वो गलत कह रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है, सही है, तो आप उनकी बात मानिए। लेकिन वो गलत को सही करने के लिए मुझे कह रहे हैं, तो आपके पास एक दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए और परमात्मिक विश्वास की शक्ति होनी चाहिए कि 50 लोगों ने समाज के लिए मुझे गलत करने के लिए प्रभावित कर रही है और कह रही है, उसका मतलब नहीं कि मैं 50 की बात में आके गलत करूं। आपका निर्णय क्या कहता है, आपका विवेक का खून करके किसी गलत को मानना एक पाप है, लेकिन अपने विवेक से सोचना और समझना, उसमें पेशे में कुछ कमी आ जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं है। 50 आदमी थोड़ी देर के लिए रूठेंगे, लेकिन आपको वो मानेंगे कि बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा बाबा का परमात्मा का वकील है।
मैं क्या उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी कि जैसे एक बार ऐसे हुआ था कि एक प्लेन हाईजैक हो गया, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे लोग हैं, जैसे घूमने वाले जाने वाले लोग हैं, तो उस समय गवर्नमेंट के ऊपर कि वकील हो कोई भी प्रोफेशनल हो उसके ऊपर एक प्रेशर आता है कि जो लोग उसको ले चुके हैं, जो खराब लोग हैं, उनको अगर रिहा करना है करेंगे तो फिर ये पैसेंजर बच जाएंगे, लेकिन अगर उनको रिहा करते हैं तो वो लोग बाद में समाज में और बहुत सारा डिस्टर्बेंस वो लोग फिर से करेंगे। उस समय अगर एक वकील हो उसके पास भी इसी तरह का कोई समस्या आता है तो उस समय उसको किस तरह से डिसाइड करना होगा, क्या डिसीजन वो लेगा कि वो क्रिमिनल को छोड़ दे ना लोगों को बचाए, क्या करे उस समय वो?
उस समय तो मैं सोचती हूँ क्रिमिनल को रिहा करना अच्छा है, दूसरे पेशेंट को बचाना अच्छा है जो दूसरे पैसेंजर है, क्योंकि एक तरफ एक दो और एक तरफ 200 है, तो आपकी गिनती किधर ज्यादा है? 200 को आपने बचाया तो 200 के परिवार को पीस मिलेगी, संतोष होंगे, और 200 मर गए एक दो को रिहा करने के लिए, और उसमें आप और भी फिर भी दोबारा भी कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा।
हर तरह से यहाँ पर तो मुश्किल है, लेकिन
है ही है,
क्योंकि ये 2-4 को रिहा अगर करते हैं तो वो बाद में और 500 लोगों को हाईजैक करेंगे, तो ये समस्या तो होती है। वो उसी समय निर्भर करता है कि क्या सही क्या गलत भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, ये बोले
पुरुषार्थ करना चाहिए कि किसी की रक्षा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हम करें। और पुरुषार्थ में जब सफलता नहीं मिलती है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते हैं। और पुरुषार्थ के लिए आपको जो पुरुषों में उत्तम है परम पिता परमात्मा, उससे थोड़ा अपना साथी बना लीजिए तो आपको इतना सुंदर सजेशन अपने आप आ जाएगा ऊपर से कि आप इस समय ये करो।
ठीक है,
जैसी परिस्थिति वैसी आपको हल मिल जाएगा।
मेरा प्रश्न ये है कि हम सब मनुष्य हैं, लेकिन सब कुछ जन के बाद बार बार क्यों भूल कर रहे हैं?
क्योंकि वो भूल को खत्म करने की शक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल पावर नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि गलत है फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब जब आपकी मानसिक एकाग्रता ठीक हो जाएगी और मन बुद्धि परमात्मा में लग जाएगा तो आपका मनोबल और बुद्धि योग बढ़ जाएगा। मनोबल और बुद्धि योग बढ़ेगा तो मन की कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। आज मन में कोई बात उठती है कि मैं करूं, जानते हैं कि आप गलत है, मुझे किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं क्योंकि क्रोध को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। एक कैदी है, देखो एक बार जेल में चला जाता है, आप उसको निकाल देती हैं पर सब फिर उसे बुरी नजर से देखती हैं। वो सोचता है मैं जेल में ही अच्छा हूं, वो दोबारा फिर चोरी करके जेल में चला जाता है। अगर एक कैदी के लिए ये सोचा जाए कि ये एक पापी का भविष्य उसके सामने है, अब जो निकल आया इसे हम अच्छी दृष्टि से ग्रहण करके समाज के अंदर लाएं, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। एक अतीत संत के लिए होता है और एक पापी के लिए भविष्य होता है, पर उसको भविष्य बिगाड़ने के निमित्त समाज बन जाता है। कहता है ये तो चोर था, इतने जेल में पड़ा रहा, गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। वो कहता है मेरे रहने से क्या फायदा, चलो फिर भी चोरी कर लो, अंदर ही अच्छा इससे तो। और वो बार बार जेल वर्ल्ड हो जाता है, उसमें घुस जाता है। तो बार बार हम वही काम करते हैं जो हमारा बुद्धि गवाह नहीं देता है। आज इतने मुकदमे, इतने लड़ाई झगड़े, केस सब क्यों है? इसका कारण है नैतिकता की कमी है, इसका कारण है स्पिरिचुअल लीडर बनने की कमी है, आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आपका मन में जो उठता है आप कर लेते हैं। सिनेमा देखो, खराब काम करो, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो मन के ऊपर सवार बुद्धि है। बुद्धि की निर्णय पावर ठीक नहीं रहने से और बुद्धि बल नहीं होने के कारण वो जो मन घोड़ा है उसको कंट्रोल करना नहीं आता है।
तो क्या करें?
और बुद्धि की पावर आने के लिए एक ही मेडिसिन भी है, मेडिटेशन भी है, वो है राजयोग। परमात्मा को कहते हैं सर्वशक्तिवान। अगर आपका सब जगह से कनेक्शन है, मामा चाचा काका नाना दोस्त सब से कनेक्शन है, लेकिन मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, तो आपको रोशनी आएगी, शक्ति आएगी, नहीं आएगी। तो जब आपका बुद्धि का कनेक्शन मेन पावर हाउस सुप्रीम पावर से जॉइंट हो जाएगा तो उससे बराबर आपको लाइट आएगी, माइट आएगी और लाइट आएगी। फिर आपके मन में ये लगा कि गलत है, आपको आवाज आती है हमेशा। आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब बुरा काम करता है तो उसे बुद्धि आवाज देती है कि बुरा है, लेकिन वो बुद्धि की बात को नहीं मान के और मन में उठे हुए बुरे संकल्प को कर्मों में ले आता है। और कर्मों का आधार क्या होता है? रिएक्शन, एक्शन। और एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं, फिर हम कमजोर होते चले जाते हैं। जो कोई भी बात को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं कि अच्छा करें फिर भी ना करके बस वही कमजोरी काम करते रहते हैं। अगर आपके अंदर वो विल पावर आ जाए आध्यात्मिक पावर से तो आप ना चाहते हुए कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मन भी आपका घोड़ा है और सवार है बुद्धि। तो आपका घोड़ा जब तक आपने लगाम नहीं पकड़ी है तो भागेगा, पछाड़ देगा आपको, गिरा देगा। तो उसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए कि क्या कह रहा है, क्यों ऐसे गलत मुझे कराने के लिए कह रहा है। तो आपको उस समय बहुत ही समझ की आवश्यकता है और युक्ति युक्त चलने की आवश्यकता है और युक्ति युक्त करने की आवश्यकता है।
ये चीज राजयोग करने से, अच्छे संगत के साथ रहने से ये चीज हमको समझ में आ जाती है। इसी के साथ दीदी आज का कार्यक्रम को हम यही रोकेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्नों को इस फोरम पर लाने के लिए, धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें से कुछ सीख आप जरूर लिए होंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम को यही रोकते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।